તારીખ 15/3/1996 સમકિતના બીજુના આર્ટિકલ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 79. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
परिभ्रमण क्यों हो रहा है उसको विषय चर्चा किस कारण से हो रहा है. परिभ्रमण का कारण मूल में तो अज्ञान और मिथ्या है, और अज्ञान और मिथ्या रहने से जीव को अनेक प्रकार के स्वच्छंद के परिणाम होते हैं और प्रतिबंध के भी परिणाम होते हैं. ये स्वच्छंद और प्रतिबंध भी अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से ज्ञान में उसी कारण से श्रद्धान में भी विपरीत श्रद्धान और श्रद्धा उल्टा श्रद्धान होता रहता है. वो ज्ञान में अपने स्वरूप के विषय में मूल स्वरूप से अनजान होने से कर्मजनित अवस्था को जो जो कर्मजनित अवस्था को जीव संसार में प्राप्त होता है परिभ्रमण के दौरान उस रूप अपने को मान करके वो चलता है. अवस्था अपना मूल स्वरूप नहीं है, मूल स्वरूप तो बिल्कुल शुद्ध चैतन्य सहजात्मक स्वरूप. ऐसा अपना स्वरूप है उससे बिल्कुल अनजान रहता है, और जो भी कर्म प्रसंग से अवस्था हुई सर्वस्व उतना ही अपने को मान करके जीव अनेक प्रकार के परिणाम विभाव परिणाम उनके परिणाम करता है और फल स्वरूप वो संसार में परिभ्रमण करता है. ये मूल कारण तो अज्ञान और मिथ्या होता है, और यही कारण से अज्ञान के कारण से ही धर्म के क्षेत्र में भी स्वच्छंद से चलता है. स्वच्छंद से चलता है इसका मतलब वो है कि अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत ज्ञानी हो गए, उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मार्ग पर नहीं चलते. अपने को जो ठीक लगता है वो कर लेता है. बहुभाग तो जिस संप्रदाय में जीव जन्म लेता है उस संप्रदाय वाला अपने को मानता है, और धर्म के विषय में कोई जांच तलाश नहीं करता है. हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जो चलता है वो चाहे जैसा कुछ भी हो स्वीकार कर लेता है, उसको अंधश्रद्धा भी कहते हैं। तो जिस संप्रदाय में वो जन्म लेता है उस संप्रदाय में जो प्रकार चलता है धर्म के क्षेत्र में, जो रूढ़ि होती है, रिवाज होता है, उनको अनुसरण कर लेता है। और कुछ न कुछ धर्म किया ऐसा संतुष्टपना, इस प्रकार से संतुष्टपना जीव को हो जाता है। वास्तव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस विषय में जो दरकार होनी चाहिए वो दरकार मूल में नहीं होती। कुछ एक लोगों को ज्ञानी की वाणी मिलती है, ज्ञानी मिलते हैं, समझ में भी बात आती है, तो उसमें भी जितनी गंभीरता इस विषय की आनी चाहिए उतनी गंभीरता नहीं आती है। और अपने प्रयोजन के विषय में जो सूझ होनी चाहिए वो इस कारण से आती नहीं। बहुभाग लोगों को तो मूल बात समझने का मौका नहीं मिलता, और जिनको समझने का मौका मिलता है वो भी किसी न किसी कारणवशात इस विषय की गहराई में जाते नहीं, ऊपर ऊपर से चल देते हैं। इस प्रकार जीव का परिभ्रमण अब तक चालू रहा है। ऐसे ऐसे कारण बने हैं, कभी कभी तो ऐसा भी बना है जो कुछ बैंसरी ने अपने वचनामृत में बात लिया था कि थोड़ा प्रसाद करता है और पर्याप्त मात्रा में प्रसाद नहीं करने के कारण से फिर वो परिस्थिति आ जाती है। इतने हद तक ये सब बातें बनी हैं और जो परिभ्रमण का अनुभव होना चाहिए उस हद तक भी पहुंचाने वो हद है स्वानुभव और सम्यक दर्शन। स्वानुभव और सम्यक दर्शन जहां तक जीव को नहीं होता है वहां तक अनंत संसार की जीव की जो योग्यता है वो योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो योग्यता चालू रहती है। एक बार भी प्रवेश हो जाए मोक्ष मार्ग में तो जीव की सारी योग्यता बदल जाती है। फिर जो कुछ काल लगता है तो काल के अनंतता के अनुपात में कोई खास बात नहीं है, चिंता करने योग्य बात नहीं है। परंतु जीव को इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है जैन दर्शन जैसा सर्वोत्कृष्ट धर्म का योग हुआ है। अनेक ज्ञानियों की वाणी भी मिली है ग्रंथ रूप में, कभी प्रत्यक्ष रूप में। इतना संयोग बार बार नहीं मिलता। फिर भी जीव लापरवाही करे तो इसका भी फल कुदरत की व्यवस्था में है, इसका फल भी कुदरत की व्यवस्था में तो इसका फल है कि बार बार इसको ऐसा मौका फिर नहीं मिलता है। इसी विषय पर तो श्रीमद जी ने कि बहु पुण्य तेरा पुण्य से शुभ देह मानव नमयो, इसी विषय पर तो ये काव्य लिखा गया। और छोटी उम्र तो हमें ये विचार करना है, हमारे लिए विचार करना है तो वही करना है कि जैसे कैसे भी हम सही मार्ग पर आ जाए। हमारे परिणाम की विचित्रता यह है कि हम मृत्यु के भय से डरते हैं। मृत्यु का भय क्या? मृत्यु का कारण भी आ जाए तो भी डरते हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ा गंभीर रोग उत्पन्न हो जाए, प्राण घातक, तो भी भय लगता है। और अनंत जन्म मरण होने का कारण रूप मिथ्यात्व और अज्ञान मिटा नहीं तो इसका भय नहीं लगता है। एक बहुत बड़ी विचित्रता रही। गणित तो बहुत सीधा साधा है कि एक मृत्यु का भय से डरता है तो दो मृत्यु का भय से डबल डर लगना चाहिए, और अनंत मृत्यु का भय से तो कितना लगना चाहिए। इसके बजाय भय लगने के तो बदले में बिल्कुल असर ही नहीं पहुंचती है कि कभी भी आयु पूरा हो जाए तो आगे क्या होने वाला है, इसकी चिंता बिल्कुल हो नहीं रही है। इसका कारण भी मिथ्यात्व तो तगड़ा है। इसका कारण क्या है? मिथ्यात्व तो तगड़ा है। और मिथ्यात्व इतना तगड़ा है, बलवान है, तो भी इस विषय में बिल्कुल जागृति नहीं आती है। ये इस बात का सूचक है कि भविष्य अच्छा नहीं है। जिसको इस संसार से छूटने का मार्ग प्राप्त करने की इच्छा हुई हो उनको दूसरे सभी प्रकार के विकल्प को छोड़ करके आता है 195 पत्र में मार्ग प्राप्ति की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई हो उसको सभी प्रकार के विकल्प को छोड़ करके सभी प्रकार के विकल्प का छोड़ना का यहाँ मतलब क्या है कि दूसरे दूसरे प्रकार का धर्म साधन करने का विकल्प को छोड़ने की बात है। उदय के विकल्प तो उदय अनुसार आए बिना रहेगा नहीं क्योंकि उसमें तो योग्यता भी गई नहीं उस योग्यता में तो खड़ा है तो संसार के विकल्प तो आएगा लेकिन धर्म साधन के विषय में दूसरे किसी भी प्रकार के विकल्प को स्थान नहीं दे करके सबसे पहले जीव को परिभ्रमण की चिंता क्यों नहीं हो रही है इसका विचार बार बार कर्तव्य है। वास्तव में तो जीव को क्षण प्रतिक्षण सभी कार्य में सभी प्रसंग में ये बात नजर आनी चाहिए कि ये सभी प्रकार के मेरे परिणाम ऐसे ऐसे प्रकार के मेरे परिणाम परिभ्रमण के कारण भूत रहे हैं। वो कहां तक मैं करता रहूंगा बहुत बातें इसमें रही है बहुत बहुत बातें इसमें रही है। दिखाएं इसमें अनंत अर्थ समाया हुआ है इसका मतलब क्या अनंत अर्थ का विस्तार करे तो अनंत होता है लेकिन जीव को अपने चलते हुए परिणमन में वो बात दिखनी चाहिए। मिथ्यात्व के जो द्योतक जितने भी परिणाम हैं वो परिणाम चलते हैं इस विषय में इसका अभाव करने के कोई जागृति नहीं है तो कुछ भी करें इस विषय को छोड़ करके धर्म के क्षेत्र में कुछ भी करें क्या वो आगे नहीं किया है आगे शास्त्र ज्ञान नहीं किया था यम नियम संयम नहीं पाला था हाँ सब कुछ किया था लेकिन जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया जिस क्रम से चलना चाहिए वो नहीं हुआ। कुछ बैंकरी ने 2 के वचनामृत में बहुत अच्छी बात कर दी इस विषय में कि अंतर से आत्मकल्याण की लगन लगनी चाहिए। अंतर से नहीं लगती है, वहां तक ऊपर ऊपर से जीव चलता है। ऊपर ऊपर से चलने से इसका कोई फल नहीं आता है। इस प्रकार से देखें तो आत्मकल्याण के समीप जाने के लिए जो सामग्री चाहिए देश के, उस प्रकार की उपदेश की सामग्री हम लोगों को बहुत प्राप्त है। बड़े पैमाने में साहित्य हमारे यहाँ आता है और घर में भी हम लोग बसाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अमलीकरण के विषय में उतनी जागृति नहीं रहती। सामान्य लोगों को भी इस बात का पता चल जाता है कि बात तो बात है लेकिन आचरण का क्या है। आचरण माने परिणाम। आचरण में मुमुक्षु की भूमिका में कोई इतनी बाह्य त्याग की भूमिका नहीं होती है, लेकिन जो अपनी भूमिका के योग्य उपदेश हो इसका तो अमलीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर इसका भी अमलीकरण नहीं है तो फिर सुधार होने की परिस्थिति कहां से बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। हम लोग बहुत भाग तो व्यापारी लोग हैं, हमारे में से बहुभाग लोग तो व्यापारी हैं। व्यापार में हम सब प्रकार का हिसाब किताब संभालते हैं कि नहीं संभालते। सारे दिन में जितने भी लेना देना होता है शाम को टैली कर लेते कि नहीं कर लेते, कि कहीं भूल चुक तो नहीं हुई हो। और जब मेल नहीं खाता है तो जांच तलाश कर लेते हैं, सारे दिन में क्या क्या लिया क्या क्या दिया। डे टू डे हम उतनी सावधानी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहां डे टू डे कुछ नहीं करना होता है क्या। दिन भर जो हमारे परिणाम होते हैं ये उपयोग का व्यापार नहीं है क्या। उस विषय में हमारी दरकार कितनी है। मुमुक्षु की भूमिका में हम कितने आगे बढ़े उसकी चर्चा विचारना आपस में होनी चाहिए। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भूल वहां होती है कि हमारी जानकारी बढ़ती है, वहां भूल हो जाती है। कि जानकारी बढ़ी तो ज्ञान बढ़ा या समझ बढ़ गई। और सूक्ष्म बढ़ता भी है, नहीं बढ़ता है तो बात नहीं है, परंतु हमारी वर्तमान योग्यता है उसमें भी हम एक कदम भी कहां आगे बढ़े उसकी चर्चा विचारना चलनी चाहिए। उतना ही नहीं, अगर हमें भान हो गए हम कहाँ खड़े हैं, तो हमारे युग की जितनी जितनी बातें हमारे सामने पढ़ने में आए या सुनने में आए, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और उसको अंगीकार करने का हमारा पुरुषार्थ भी चलना चाहिए। उतना अगर नहीं हो तो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सूक्ष्म बढ़ता रहेगा, वास्तव में मुमुक्षु की भूमिका में जो विकास होना चाहिए उसमें से कुछ नहीं होगा। वहां के वहां परिस्थिति रहेगी और जब आयु आगे बढ़ेगा, जीवन के उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे, 40-50 साल के बाद तो मान लेना चाहिए, क्यों कि 50% से ज्यादा आयु भोग लिया। पर आगे का जो शेष आयु है वो नियमित नहीं है, नियत नहीं है, अनियत है, अनिश्चित है, और ये तो नजर के सामने हर हमेशा देखने में भी आता है कि कभी किसका क्या होता है, कभी किसका क्या हो जाता है। इस परिस्थिति में फिर भी हमारी जागृति नहीं आई तो कुदरत तो माफ नहीं करती है, कुदरत तो नहीं माफ करती है, उनके यहाँ तो हिसाब किताब बहुत बारीक है। एक छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतरंग परिणाम का भी फल आता है, तो स्थूल परिणाम का तो आएगा ही आएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग की दिशा में हम एक एक कदम भी आगे बढ़ते रहे तो एक दिन आएगा कि मार्ग तक पहुंचेंगे। उसके बराबर दरकार होनी चाहिए। बहुभाग्य ये होता है कि शास्त्र के अध्ययन करने वाले को सूक्ष्म बढ़ता है और सूक्ष्म बढ़ाने के पीछे ही इनके परिणाम लगे रहते हैं, और जो साथ साथ अनेक प्रकार के मंद कषाय के जो परिणाम होते हैं, ये दो बातों से धर्म के क्षेत्र में अटकना हुआ है उसकी गिनती होती है, और जाने अनजाने में वहां संतुष्टपना आ जाता है। गिनती इस प्रकार से होती है कि सारे दिन में कुछ तो करते हैं, कुछ ने कुछ तो किया, बिल्कुल नहीं किया ऐसी बात तो नहीं, कभी कोई दिन नहीं भी करते चलो इसको छोड़ो, लेकिन करीब करीब तो हमेशा हमेशा कुछ न कुछ तो धार्मिक विषय में हमारे परिणाम लगते हैं। वहां जाने अनजाने में भी इस प्रकार की जो गिनती है वो संतुष्टपना के सिवा कुछ नहीं है। और वर्तमान अवस्था में संतुष्टपना को मिथ्यात्व को तीव्र करने का बढ़ाने का परिणाम है। तो जाने अनजाने में भी हम दर्शनों को काटने के बजाय बढ़ा देते हैं, उसका ख्याल हमको नहीं रहता। ये सत्संग किसके लिए है? सत्संग क्यों, किस कारण से सत्संग करना? कि यही कारण से करना जरूरी है कि हम दर्शन मोह का अभाव करने की दिशा में क्या क्या कर रहे हैं। और भूल से तो कोई दर्शन मोह बढ़ तो नहीं रहा है। दर्शन मोह बढ़ने के परिणाम कैसे कैसे होते हैं, उस विषय में हमारे परिणाम के प्रति हमारी जागृति कितनी, अनंत काल में अनंत बार मुमुक्षुता आई, लेकिन खरी मुमुक्षुता आई कि नहीं, वो एक सवाल है। अनंत काल ऐसे मुफ्त में तो नहीं गया। जब अनंत काल गया ही है और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई और परिभ्रमण का कारण यूं का यूं रहा, तो इसकी भी तो कोई वजह तो है। ज्ञानियों ने मिथ्यात्व को भूल बताया है। क्या बताया है? मिथ्यात्व को भूल बताया है। भूल से ये बात होती है। कभी कभी मिथ्यात्व मंद होने का मौका मिलता है, सही बात सुनने की मिलती है। कभी कभी देव गुरु शास्त्र ज्ञानियों की महिमा भी आती है, फिर कभी उल्टा परिणाम उस विषय में चल जाता है, इनका ख्याल नहीं रहता है। कि थोड़ा दर्शन मोह कम हुआ लेकिन बढ़ गया कब, वो मालूम नहीं पड़ता है। प्राय तो धर्म के क्षेत्र में जो परिणाम होते हैं वो तो चारित्र मोह मंद होने के होते हैं। दर्शन मोह का अभाव होने की दिशा में दर्शन मोह को कमजोर होना जरूरी है। उस पर तो ध्यान कहाँ है, उस पर लक्ष्य कहाँ है, उसकी समझ कहाँ है, हमारे परिणाम को पकड़ करके। तो उसका ध्यान नहीं रहता। और दूसरा रहा उदय, धर्म के क्षेत्र को छोड़ करके घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा जो भी है, फिर परिणाम लगते हैं संसार के उदय में। तो संसार के उदय में संयोग की आधार बुद्धि, संयोग में सुख बुद्धि और जो प्रारब्ध के कारण से जो भी संयोग प्राप्त हुए हैं उसमें अपनापन, ये सब मेरा है, सचेत अचेत जो भी पदार्थ का संयोग होता है उसमें मेरा पना जो आता है और मेरा पने का लगातार परिणाम रहा करता है। और उदय के प्राप्त होते हैं तो उदय में भी वही परिणाम रहता है। ये दर्शन मोह को बढ़ाता है, वो ख्याल नहीं रहता है। क्या करें, गृहस्थ में तो ऐसा ही होता है ना, बहुत लाइटली हम ले लेते हैं उसको, हल्के से, कि ठीक है सबके घर में सबके गृहस्थ में नॉर्मली जो होता है वैसा हमारे घर में हो रहा है, कोई खास उतनी अनुचित बात तो हम नहीं कर रहे हैं। परिवार में आपस में स्नेह होना बहुत सामान्य बात है, कितना सामान्य है, तो सबको होता है वैसा हमको हो रहा है। लेकिन मिथ्यात्व का सबसे बड़ा पाप है अपनत्व करने में, इसकी भयंकरता, इसका फल अनंत परिभ्रमण है, इसकी भयंकरता फांसी तो नहीं होती है। और जीव आयु पूरा करके मनुष्य आयु पूरा करके अधोगति में चला जाता है। संसार में कुटुंब प्रेम को बुरा माना जाता है क्या, मेरा प्रश्न है। कितना लाइटली हम लेते हैं, बहुत सामान्य है, सबके घर में है। हम हमारे बाल बच्चों से स्नेह नहीं प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। हाँ, और सब करते ही हैं, उसमें इतना बड़ा पाप कौन सा है। संसार में एक परिस्थिति बनती है कि जो सब करें उसकी कोई, सब करते हैं इसलिए इसकी कोई कितनी भी खराबी हो तो खराबी गिनी नहीं जाती, कोई खराबी नहीं गिनी जाती क्योंकि सब करते हैं। एक जमाना था कि बड़े बड़े राजा और श्रीमंत लोग हैं वो यज्ञ यागादि करते थे और उसमें प्राणी की हिंसा करके उसका हवन करते थे, उसमें डाल देते थे। सब करते थे इसलिए वो अनुचित नहीं किया जाता, अनुचित गिना नहीं जाता था और धर्म के नाम पर ये सब चलता था। किसी भी बहाने, धर्म के बहाने, फर्ज के बहाने, ये जो पर में अपनापन है ये भयंकर अज्ञान और मिथ्यात्व है। ये अनंत संसार परिभ्रमण का कारण है। ये ताजुब तो इस बात का है कि ये सब अलग है, भिन्न है, ऐसा तत्व ज्ञान का विषय जिस जैन दर्शन के शास्त्र में है और कई जगह तो है ही नहीं। जड़ चेतन की भिन्नता का, द्रव्यानुयोग का विषय, सिवा विनागम, विनागम के सिवा और जगह तो वो पाया नहीं जाता। लेकिन वो बात समझ में आती है, अनुभव विपरीत चलता है, खुद के परिणमन में परिणमन ऐसा नहीं चलता है। ये समझ और परिणमन का अंतर इतना बड़ा है, पूर्व पश्चिम जितना, उसका ख्याल नहीं रहता और उस अंतर को काटने के लिए कोई पुरुषार्थ और प्रयास करना चाहिए, वो नहीं होता है। जहां तत्वज्ञान की परिपाटी नहीं वहां तो वो विषय भी नहीं चलता। आजकल संप्रदाय में ये तत्वज्ञान का विषय लुप्त प्राय हो रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत जहां चलता है वहां भी परिणमन पर ध्यान नहीं जाता। समझने का समय हमारा कहाँ तक है और परिणमन कब चालू करना है उसका कोई निर्धारण नहीं। वास्तव में तो ऐसा होना चाहिए कि समझ के साथ ही उसका एप्लीकेशन का प्रयास चालू होना चाहिए। समझ तो थियोरिटिकल नॉलेज है, अगर थियोरी को अप्लाई नहीं किया तो फिर थियोरी किस काम की रही, तो समझ तो बेकार जाएगी। ये तो बेकार हो ही रही है, बेकार जाएगी क्या, उसकी बेकारी हो ही रही है। तो हमने हमारी समझ को हमारे उदय के परिणमन में लागू किया कि नहीं किया, लागू करने का हमारा प्रयास चलता है कि नहीं चलता है, उस विषय में कुछ देखने में नहीं आता है। इसलिए जैसे दूसरे दूसरे धर्म साधन से कोई पारमार्थिक लाभ नहीं है, वैसे ही ठीक इस प्रकार की सही जानकारी से भी पारमार्थिक लाभ कुछ नहीं होता है। तो जो परिभ्रमण चालू रहा है इसमें ऐसे बहुत प्रकार के अर्थ समाया हुआ है और उस विषय में ज्ञानियों की, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा समझ करके और इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो उस पर पैर रखना हो जाएगा, ऐसा विशेष रूप से सोच करके उसी विषय में चिंतना होना, उसकी चिंतना होनी और आगे बढ़ करके वेदना होनी जरूरी है। इस विषय में और कोई विशेष प्रश्न हो तो या कोई चर्चा करनी हो तो सोच सकते हैं, और कम समय है हमारे अपने पास में भी सत्संग का। लेकिन ये गंभीर विषय है, कम से कम उतना लक्ष्य में लेकर के हमारे परिणाम उसी दिशा में चालू हो जाए वो आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब ये नहीं हो रहा है तो हम दूसरा कुछ कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए।
दर्शन मोक्ष की व्याख्या बताइए। दर्शन मोक्ष,
हाँ,
की क्या व्याख्या?
व्याख्या मिथ्या मान्यता, अपने विषय में और पर पदार्थ के विषय में जो भी मिथ्या मान्यता है, मिथ्या श्रद्धान है, इस परिणाम को दर्शन मोक्ष कहते हैं। जो सम्यक दर्शन से विरुद्ध परिणाम है, सम्यक दर्शन से विरुद्ध जाति के परिणाम है, और जिस कारण से चलते हुए परिणाम में जीव को हे उपाधि का ज्ञान नहीं रहता। इसलिए जो नुकसान जहां होता है वहां ख्याल नहीं रहता और वहां अच्छापन भी कभी कभी जीव मान लेता है। आत्म जागृति के प्रश्न के उत्तर में दर्शन को बताने वाले परिणाम की लिस्ट थी, लेकिन मोटी मोटी बात तो वो है कि हम अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरे पदार्थ